अपने इस मुख्तसर से जिंदगी को सबसे ज्यादा इस चीज की तरफ आदमी को मुतवज्जे रहना वो है मकसद जिंदगी की सबसे ज्यादा अहम चीज जिसके लिए पैदा किए गए जिस मकसद से पैदा किए गए वो मकसद मेरी जिंदगी में पूरा जिंदगी की जरूरियात जिंदगी जरूरियात की तरफ आदमी जरूरियात के हद तक मुतवज्जे है लेकिन जो मकसद है जिंदगी उसको सबसे ज्यादा अहमियत और वो आपको मालूम है कि बंदगी रब है रोजगार की बंदगी अब्दुल्लाह अल्लाह की इबादत उनके मंशे की रियायत उनके अहकाम की याद उनकी मोहब्बत उनकी याद उसकी तरफ आदमी ज्यादा से ज्यादा अपनी तवज्जो को महसूस करे कि जब बंदों में ये सिफत आती है तो फिर वो बंदे में महबूबियत आ जाती है रोजगार आलम से प्यार और ऐसे बंदों को खुशियत के साथ रोजगार अपनी जात से निस्बत करते हुए बयान करते देखो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया लम्मा काम अब्दुल्लाह हजरत सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहि सलातु वसलाम जब बिल्कुल नबी नौ मौलूद नए नए पैदा हुए बच्चे और बीबी मरियम उन्हें ले आई लोगों के दरमियान लोगों ने उनको बुरा भला कहना शुरू किया उनकी तरफ बुराई की निस्बत करनी चाहिए और पूछा कि ये क्या हुआ माकान अबू की मरा असल और माकान तुम्हों की बगैया तुम्हारे वालिद खराब नहीं थे तुम्हारी अम्मी खराब नहीं थी ये तुमने क्या किया उन्होंने कुछ जवाब देने के बजाय बच्चे की तरफ इशारा कर दिया आशारती लही इसी से पूछो मैं कुछ नहीं बोलूंगी ये मंदिर इन्नी नजर तुले रहमान सोमा मैंने तो रोजा रख रखा है चुप का रोजा खामोश रहने का उन लोगों ने कहा कैफा नुकल्लिम मन काना फिल वहद सबिया जो बच्चा गोद में होता है नौ मौलूद होता है वो बच्चा तो बात नहीं करता हम उससे कैसे बात करें बस उन लोगों ने ये जुमला कहा और हजरत ईसा अलैहि सलाम ने बात शुरू कर दी और जो बात इरशाद फरमाई वो बात ये थी काला इन्नी अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा ये बंदा में खुसूसी सिफात पैदा हो जाती है और हक ताला की मर्जियात पर मुकम्मल तौर पर न सिर्फ ये के राजी होता है बल्कि वो उसके नजदीक ये दर्जे पसंदीदा बन जाती है कि रब की मर्जियात को पूरा करने ही में ये इत्मीनान चैन और सुकून महसूस करता है तो ऐसे बंदों को परवरदिगार आलम मुखातब करते हुए इरशाद फरमाते हैं फद खुली की इबादी मेरे बंदों में करते हुए इरशाद फरमाते हैं फद खुली की इबादी मेरे बंदों में दाखिल हो सबसे अजीम शान लखम अब्दुल्लाह की का लखब है यही वजह है कि सबसे अजीम शान तारीखी वाकये में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने इसी लकब से पुकारा इसी लफ्ज से पुकारा और फरमाया सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही अपने बंदे को रातों रात सफर कराए बैतुल मुकद्दस तक बैतुल्लाह से तो सबसे ज्यादा पसंदीदा जो चीज है वो अब्दियत उस सिफात अब्दियत से आरास्ता बंदों के हक में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाते हैं कि हमारे बंदों इब्राहिम को इसहाक को याकूब को याद करो इबादना इब्राहिम व इसहाक व याकूब हमारे उन बंधुओं को याद कर। और फिर इरशाद फरमाया लकद कानत लकुम उसवतुन हसनतुन फी इब्राहीम वल्लज़ीन मा, हमारे वास्ते बेहतरीन नमूना है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में और उन लोगों की जिंदगी में जो उनके साथ। हर साल ये दिन आते हैं, ज़िलहिज्जा के ज़िलहिज्जा के कुर्बानी का वक्त आता है, कुर्बानी की ईद आती है और मौसम हज जुहे शुरू होता है, तो वो मनासिब जो हज से मुतालिक होते हैं हजारों अल्लाह को बंदे उसे इख्तियार करते हैं और दुनिया भर से लोग उधर रुख करते हैं और छोड़ने वाले लोगों की तादाद लाखों बल्कि करोड़ों की तादाद में होती है। गोया इस तरीके से मजमूई हैसियत से पूरे आलम पर उन ज़वात मुकद्दसा के उन सिफात की तरफ गोया मुतवज्जे होने का एक सामान मुहैया हो, उनकी हयात तैयबा पर गौर फिक्र करने का एक मौका मिलता है, उनकी अब्दियत और बंदगी के आसार को जानने समझने मालूम करने का एक मौका हाथ आता है। और उन लोगों ने परवरदिगार आलम के साथ में जो इताअत परवरदारी का मुजाहरा किया उसकी याद दहानी और उसकी ताजगी के अस्बाब मुहैया होते, ये कम अज कम इतनी कुव्वत के साथ में ताजा हो कि फिर साल तमाम काम चल सके। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पहले जमाने में बड़ी घड़ी होती मस्जिदों में ऊपर मगरबी दीवार में किसी सुकून के ऊपर वाले हिस्से में बहुत बड़ी घड़ी होती थी, इसके साथ ही बड़ी कुंजी भी होती और सीढ़ी वीढ़ी पे चढ़ के आठ दिन में एक मरतबा उसको कुंजी उसमें भरते थे और उसके नतीजे में फिर वह आठ दिन तक मुसलसल चलती रहती थी। एक मरतबा कुंजी दो तो हफ्ता भर तक वो चलती रहती थी। इस जमाने में तो वो शक्ने सूरतें शायद कम बाकी रह गई है, लेकिन दूसरी शक्ने सूरतें मौजूद है, जैसे आप एक मरतबा बैटरी को चार्ज करा लो तो दो दिन चले, तीन दिन चले, एक हफ्ता चले, एक महीना चले, ऐसा चलता है निजाम। तो ऐसे ही मौसम में हज आ जाए तो अबियत और बंदगी के वो आफ्ता वो महताब जो बंदगा ने हक थे इनको परवरदिगार आलम ने बेहतरीन नमूना करार दिया और फरमाया कि तुम उन्हीं के मजहब उन्हीं के मिल्लत उन्हीं के दीन उन्हीं के तरीके के ऊपर हो, मिल्लत अभी को भी बराएगी वो याद आए और इस कदर कुव्वत के साथ में याद आए कि साल तमाम जिंदगी में बंदगी को बरकरार रखने में वो चीज हमारे हाथ में एक मुहर्रिक का काम दे, तो समझना चाहिए कि हाँ वाकईतन हमारे सोचने का रुख सही है, हमारे दिलों का रुख सही है, हमारे जमीर में किसी तरह की कुछ रोशनी है और कोई बसीरत हमें मुयस्सर है और हासिल है यूं समझा जाए। अब उनके जिंदगी में क्या वाकियात थे, बंदी बंदगी की नौइयत कैसी थी, अब्दियत कामिला के कैसे वो मजहर बने हुए थे, उसके वास्ते उनकी पूरी तारीख को आदमी जाने पढ़े हालात के उनके मुताला करता रहे तो पता चले कैसे कैसे उन लोगों ने परवरदारी के मुजाहरे किया। अकेले तौहीद का ऐलान कर दिया और पूरी की पूरी कौम मुखालिफ हो गई। इस जमाने में बहुत से लोग यूं कहते हैं कि दीन पे चलना बहुत मुश्किल हो गया, लोगों बहुत मुखालिफत है। तो लोगों के मुखालफत करने नहीं करने से हमारी आकिबत का बनना बिगड़ना मुतालिक है नहीं, हमारी आखिरत का बनना हमारी आकिबत का अच्छा होना हमारी आकिबत का बिगड़ना ये लोगों के हाँ या ना की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत परवरदारी एतकाद और यकीन उनकी बातों की तस्दीक जिस दर्जे में यारी अपने अंदरून में होगी कामयाबी नाकामी का ताल्लुक उसी एतबार से मुतालिक है। बहुत सारे लोग आज दीन को दीनियात को ईमानी याद को ईमानी तकाजों को महज इस वास्ते नहीं अख्तियार कर रहे हैं कि साहब लोग बड़ी मुखालफत करते हैं, लोग बड़ा बुरा भला बोलते हैं और लोगों से कौन दुश्मनी मोल लेंगे, इस वास्ते कुछ तो वो है जो एतकादात की दुनिया में पीछे रहते हुए हैं और एक बड़ी तादाद और अक्सरियत वो है जो अमाल के एतबार से थी। जब हक को अपनाया जाएगा तो ना हक को थोड़ा बहुत मुकाबला करने की कोशिश करे, वो तो चलता ही रहता है, नतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज चरा है मुस्तफवी से شرار ابو لہب ہمیشہ آفتاب رسالت کو ابو لہب کی چنگاری آنکھیں دکھانے کی کوشش کرتی رہی, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آفتاب کے مقابلے میں مہتاب سے بیکار ہو جاتا ہے. تو پھر ایسی صورت میں یہ چھوٹے موٹے ٹمٹماتے چراغ اور موقتی چمکنے والی چنگاریاں ان کی کیا حیثیت ہو؟ پوری قوم کی مخالفت کے باوجود توحید پر قائم اور ڈٹے, اور ایسا نہیں کہ ٹھنڈے پیٹھوں ان لوگوں نے انہیں برداشت کر لیا, بلکہ ہر طرح کی مخالفت کا سارا سامان کیا. لیکن نصیر بھی ہے کہ قائم یہ رہے بلکہ داعی بھی بنے رہے, دین کی دعوت بھی دیتے رہے, توحید کو لوگوں کو بتلاتے بھی رہے, اور اللہ کے غیر کے لائق پرستش نہیں ہونے کے سلسلے میں بار بار مختلف انداز میں اس کی وضاحت بھی فرماتے رہے. اور اس کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوا کہ خالی زبانی کی لوگوں نے مخالفت کر لی ہو, اس کی قطرے کس دیے ہو, کچھ برا بلا کہہ دیا ہو, بلکہ گردے بھی علیحدہ ہونا پڑا تو گردے بھی الگ, بلکہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ وقت کی مادی بڑی طاقت مقابلے پر آ گئی اور تباہ کرنے کا اور ہلاک کرنے کا منصوبہ بھی بنایا گیا, آگ میں ڈالے جانے کا فیصلہ بھی ہوا, لیکن انہوں نے راہ حق پر قائم رہتے ہوئے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے واسطے ایک ایسا نمونہ پیش فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں مقام پیشوائی, مقام امامت, مقام ابتدائی گویا انہیں حاصل ہو گئی. قال انی جاعلک للناس اماما, کب ملتا ہے یہ مقام؟ جبکہ یقین کی کیفیت معیاری ہو اور صفت صبر سے آراستگی ہو. دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ میں یہ بات ارشاد فرمائی, وجعلنا منہم ائمتا یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. ہم نے ان کو ان میں سے بعض کو پیشوا بنایا, بڑا بنایا, امام بنایا, مقتدا بنایا, ائمہ امام کی جمع ہے, ہم نے ان کو امام بنایا. کب؟ جب ان کے اندر دو خوبیاں تھیں, ایک یقین کی خوبی اور دوسرے صبر کی. لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. اید ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دیکھو گے یہ دونوں پہلو کتنے نمایاں. یقین کی کیفیت یہ کہ پوری قوم کے خلاف میں اکیلے کھڑے, اور برداشت کی صفت کا یہ عالم ہے کہ پوری قوم کی مخالفت اور ان کی طرف سے ستائے جانے, پریشان کیے جانے کے باوجود آپ ان سب کو جھیلتے رہے. اور آخرکار وہ مرحلہ بھی آیا جو تاریخ واقعات میں بہت ہی عظیم واقعے کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے, آگ میں ڈالے جانے. آگ میں جانے کو تیار ہے مگر اس کے واسطے تیار. ایسا ایمان مطلوب بھی ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کلمہ طیبہ کے ایسے قائل ہو جاؤ اور اللہ کی وحدانیت کا یقین اس درجے اپنے اندرون میں پیدا کرو اور ایمان اس درجے اپنے نزدیک محبوب اور پسندیدہ بنا لو کہ اس سے ہٹنا اور کلمے کو چھوڑنا تمہارے واسطے اس سے کہیں زیادہ گرا ہو کہ تمہیں کاٹا جائے یا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کیا جائے یا تمہیں آگ میں ڈالا جائے. ذرا ذرا سی باتوں میں ایمانیات, اعتقادیات, یقینیات سب چلے جا رہے ہیں. ذرا ذرا سی معمولی معمولی مادی چیزوں کے اوپر آدمی اپنا دین ایمان سب کچھ قربان کر, جائیداد کا معاملہ آ رہا ہے. یہ چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. ہمیشہ سنتے رہتے ہوں گے آپ حضرات کسی نہ کسی سے, یہ تین چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. ایک زر, دوسرے زن اور تیسرے زمین, یہ تین چیزیں ایسی ہیں دنیا کی فسادات کی بنیاد بنتی. اس کا جب معاملہ آ جاتا ہے میراث میں, تقسیم میں, جائیدادوں میں, اور ایسی صورت میں کمزور بھائی یوں کہتے ہیں کہ دیکھو اسلامی شرعی طریقے سے جس کا جو حق بنتا ہے وہ بنا کر دیا جائے, جس کا زور چلتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی کے نہیں ہوں, کوئی مولوی کے نہیں مانتا, کوئی مفتی کے نہیں مانتا, کوئی پنچ نہیں, کوئی حکم نہیں, ہم جو بول رہے ہیں بس وہی. مادے کے خاطر آدمی نے اسلام کو, شریعت کو, احکام کو چھوڑ, مادی منفعات کے خاطر جس کے بارے میں رب جلیل نے فرمایا کہ متاع دنیا تو متاع قلیل, बहुत मामूली सी थी। आदमी आमतौर पर दीन और दीन के तकाजों को महज दुनिया की मोहब्बत की वजह से छोड़ता है, याद रखिए। जो ही दुनिया की मोहब्बत आती है फिर आदमी को दीन पर चलना मुश्किल हो जाता है। इसी वास्ते दुनिया को दिल में आने नहीं देता। दुनिया को बना ही एक ऐसे लफ्ज से है कि उसने उसका धनी होना समझ में आता, मामूली बेहैसियत चीज। अल्लाह ने फरमाया उमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, मा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरती इल्ला कलील। इसी वास्ते किसी ने वजाहत करते हुए कहा मता किसे कहते हैं, बोले मता ऐसी चीज को कहते हैं जो लेके इस्तेमाल करके फेंक दी जाती, यूज एंड थ्रू चीज को मता बोलते। वक्ती तौर पर मुवक्कती तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली चीज और फिर छोड़ दी जाने वाली चीज उसको मता कहते हैं। दुनिया तो वक्ती चीज, और हमारे सामने तो नमूने मिसालें मौजूद हैं, लाखों करोड़ों ऐसे आए कि उनके हाथों में लाखों करोड़ों खेलते रहे, लेकिन अब उनके पास में किसी के पास में कुछ भी बाकी नहीं है। ऐसा मालूम होता है ख्वाब था जो मुझसे देखा, जो सुना अफसाना था ही नहीं, हमारे पास में भी नहीं रहेगा, हमारे पास पहले ही नहीं रहेगा क्या। जिनके पास बहुत कुछ था उनके पास भी कुछ भी नहीं रहा, तो हमारे पास में तो है भी कुछ नहीं तो रहेंगे। अब उसके खातिर आदमी दीन छोड़ दे, ईमान छोड़ दे, अखलाक छोड़ दे, अल्लाह के आकाम छोड़ दे, आखिरत के तकाजों को नजरअंदाज कर दे, ये कोई समझदारी की बात नहीं। मौजूद भाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के आगाज से मुतालिक आप ये पहलू को पेश नजर रखें और देखें कि साहब अल्लाह की मर्जी और तौहीद पर जमने के नतीजे में जितने हालात आए उन सबको उन्होंने झेला और बर्दाश्त किया। इसी के नतीजे में परवरदिगार आलम ने उनको वो अज़ीम शान एजाज बख्शा कि उन्हें खलीलुल्लाह बनाया गया, उनको जिस मिल्लत पर भेजा गया कयामत तक के वास्ते गोया उसी मजहब उसी तरीके कार को इख्तियार करने के बारे में फरमाया, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम इतना पसंद है। और उन्होंने जो आमाल बैतुल्लाह के पास में अंजाम दिए परवरदिगार आलम ने उन आमाल को गोया इस्लाम की अराकीन में एक अहम तरीन रुकन की हैसियत से मुकर्रर कर दिया। इसे आदमी याद रखे, फिर उनकी जिंदगी के आगे के जो वाकयात और फिर उनका मुल्क शाम से मक्के के सफर के जो हालात हैं और फिर वहाँ बीवी और बच्चे को छोड़ने से मुतालिक जो तफसीलात हैं और फिर वहाँ साहबजादे की कुर्बानी से मुतालिक जो मसाइल हैं उन सबको आदमी पेश नजर रखे तो फिर समझ में आएगा कि काहे को फरमाया गया है कि तुम्हारे वास्ते बेहतरीन नमूना है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनसे मुतालिकीन की जिंदगी। हर साल मेरे भाइयों ये मौसम हज आता है, हमारे अल्लाह के महबूब बंदों हमारे इन आइम्मा और पेशवाओं और मुक्तदाओं और काबिल इताअत और इत्तेबा शख्सियतों की याद दहानी कराता है और हमारे गफलतों से को अपने आप को गफलतों से निकालने के बाद से गोया एक तरह का सामान मुहैया होता है। समझदार वो है जो इस किस्म की चीजों से भरपूर फायदा उठाते हुए अपनी गफलत को दूर करे, अपनी अंदर शान बंदगी और शान अब्दियत को पैदा करे कि परवरदिगार आलम को सबसे ज्यादा जो चीज मतलूब है वो बस ये है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको सही इल्म व अमल की तौफीक अता फरमाए।
हमारे यहाँ मुख्तलिफ के बयान नादिर शरीफ और मुशायरों के कैसे बहुत सी चीज दस्तियाब है। हमारा पता याद रखिए, फख्र मिल्लत ग्राउंड जामा मस्जिद हैदराबाद, फोन नंबर 9346317615 फोन नंबर 9346317615।